ओम शांति, ओम शांति। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि आप लोग जो मुरली सुनाते हो वो मुरली क्या है, क्या है मुरली पूछते हैं। तो आज गीत में सुना मुरली क्या है, ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, यह है मुरली। अगर मुरली का अर्थ जानना है तो ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी है। अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही साथ में हैं, तो कई फिर दूसरा प्रश्न करते हैं, क्या केवल शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं दोनों बोलते हैं। अभी तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते थे तो कभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड रूप में थे, गुलजार दादी बीच में नहीं थी। परंतु शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सुनाते थे तो ब्रह्मा बाबा तो सुनते थे, पर शिव बाबा अव्यक्त ब्रह्मा जब सुनाते हैं गुलजार दादी के द्वारा तो गुलजार दादी सुनती नहीं, वो तो ट्रांस में होती है, बाबा उनके संस्कारों को मर्ज कर देते हैं। तो ये बड़ा अंतर है साकार और अव्यक्त मुरलियों में। लेकिन आज बाबा ने एक और राज खोला है। कौन सा? कि जब हम बाबा से श्रीमत लेने जाते हैं या बाबा की मुरली में भी श्रीमत हमें मिलती है। अब ये तो श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की है, शिव बाबा की है। लेकिन कभी कभी ब्रह्मा बाबा भी तो मत देते हैं ना, क्यों नहीं देते हैं। इसलिए केवल श्रीमती गायन नहीं है लेकिन ब्रह्मा की मत का भी गायन है। कहते हैं ना भक्ति में, ये ब्रह्मा भी उतर जाए और इसको मत दे तो भी ये मानेगा नहीं। अर्थात ब्रह्मा की मत भी बहुत मशहूर है। और क्यों मशहूर है? क्योंकि ब्रह्मा की मत का भी जिम्मेदार शिव बाबा है। ब्रह्मा अपने आप मत अगर देता भी है मानो अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत अनुभव किए हैं जीवन में, परंतु वो मत अगर देते भी हैं तो भी शिव बाबा के आधार पर ही देते हैं और शिव बाबा उसका जिम्मेदार है। तो आज बाबा की मुरली इसी बात पर बहुत जोर दे रही है कि आप ये संकल्प मत करो कि पता नहीं ये शिव बाबा की मत है या ब्रह्मा बाबा की मत है। पहले तो ये निश्चय चाहिए कि भगवान की मत है, भगवान की ये श्रीमत है मुरली। फिर शिव बाबा की मत है या ब्रह्मा बाबा की मत है तो बाबा कहते हैं इसमें भी संशय मत लाओ, क्योंकि दोनों है साथ में। अगर ब्रह्मा बाबा की भी मत है तो उसकी जिम्मेदारी शिव बाबा की है, अगर कुछ गलत भी हो गया तो शिव बाबा जिम्मेदार है। लेकिन जो बाबा की मुरली में आता है उस पर चलो, यही श्रीमत है। तो आज बाबा ने उसको बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है कि कुछ भी कहीं भी मूंझने की दरकार ही नहीं है। तो कैसे नहीं मूंझना है बाबा ने आज बहुत सुंदर रूप से समझाया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य और भी कई गुह्य राज आज बाबा ने स्पष्ट किए हैं, तो सुनते हैं। आज 3 जनवरी 2026 है। मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की है, इसमें मूझो नहीं। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो, जो मुरली में मत मिलती ये श्रीमत है। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे, अच्छी ब्रेन का मतलब है वो दुनिया की होशियारी नहीं, हाँ दिमाग दुनिया वाला नहीं, लेकिन जो बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा है। तो अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं। बहुत गुह्य है ये बात, लेकिन अच्छी ब्रेन माना अच्छे समझदार बच्चे, ज्ञानी तो आत्मा बच्चे, जिनका दिमाग हाँ बिल्कुल ज्ञानी तो आत्मा का है। तो कौन सी गुह्य बात सहज समझ सकते हैं? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। दिमाग वाले अच्छे दिमाग बाबा किसको कहते हैं, जो ज्ञान की गुह्यता को समझे। ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे, कई तो इसमें ही मुंह जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूझो नहीं, श्रीमत समझ कर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का भी रेस्पॉन्सिबल शिव बाबा ही है। श्रीमत समझ कर चलते रहो, ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। क्यों बाबा कहते हैं तुम रूहानी ब्राह्मण ही, हाँ तो बाबा क्यों कहते हैं तुम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं? दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको नहीं जानते हैं। गारंटी से बाबा कहते हैं नहीं जानते हैं कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर या परम पिता परमात्मा कहते हैं, उनको नहीं जानते हैं। जब वो रूहानी बाप आए तब ही रूहानी बच्चों को पहचान दे। ये नॉलेज क्यों अभी ही रूहानी बाप रूहानी बच्चों को ये जो नॉलेज दे रहे हैं, पहले कोई नहीं दे पाया। उसका कारण बाबा कहते हैं ये नॉलेज न सृष्टि के आदि में रहती है, सत्युग में तो रहती नहीं है ये नॉलेज, न सृष्टि के अंत में रहती है, कलयुग में भी नहीं रहती है ये नॉलेज, न सत्युग में न कलयुग में, अभी तुमको मिलती है। ये है सृष्टि के अंत और आदि का संगम युग, केवल संगम युग पर ही ये नॉलेज मिलती है। इस संगम युग को भी कोई जानते नहीं तो बाप को कैसे जान सकेंगे? कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ये भी पता नहीं है कि पतित पावन कौन है। आओ बुलाते हैं पतित पावन को, लेकिन कौन है वो पतित पावन और वो कब आएंगे, हाँ ये कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते हैं। गीता में ये साफ अक्षर है, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपनी पहचान खुद ही आकर देता हूँ, कोई नहीं जानते। जब मैं आकर पहचान दूं तब मुझे जाने। मैं अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार आकर देता हूं, कल्प बाद फिर से आता हूं। अभी आया फिर सारे कल्प में नहीं देंगे परिचय, कि फिर कल्प के अंत में देंगे, कल्प बात फिर से आता हूं, तुमको जो समझाता हूं क्यों आदि में और अंत में किसके पास भी नहीं है, सारे कल्प में किसके पास भी नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं कल, हाँ, तुमको जो समझाता हूं वो प्राय लोप हो जाता है। अभी समझाया लेकिन जैसे ही सतयुग में गए सब कुछ भूल गया, कुछ भी याद नहीं रहता है संगम युग का, सब प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परम पिता परमात्मा को नहीं जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं जानते। हाँ, वो दिखाते ना त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तो बाबा त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाबा कहते वो भी कहाँ जानेंगे जब तक शिव बाबा न देवे ज्ञान। न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते, वो भी नहीं जानते, और ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी कोई जानते नहीं, और वो भी नहीं जानते जब तक शिव बाबा ज्ञान न दे। मुझे मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी पुकारते हैं, वो ही जानना चाहते हैं ना, तो मनुष्य ही पुकारते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी पुकारते हैं। मनुष्य दुखी होते हैं तब पुकारते हैं, तो न शिव को जानते हैं न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं, शिव ही ज्ञान सुनाते हैं। मनुष्य जब दुखी होते तो पुकारते हैं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, ऐसे तो नहीं वहां पर आकर ज्ञान देंगे, मनुष्यों को ही ज्ञान देंगे। रूहानी बाप आकर अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ समझाते हैं। अच्छा, रूहानी बाप का नाम क्या है? बाबा जिसको कहा जाता है, हम बाबा कहते हैं, तो वो रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कुछ नाम होना चाहिए। पिताजी पिताजी तो कहेंगे, पर पिता का नाम तो होता है ना। बरोबर नाम एक ही गाते हैं, शिव। ये नामी ग्रामी है, शिव नाम नामी ग्रामी है, परंतु मनुष्यों ने अनेक नाम रखे हैं। कितने मंदिर है शिव के, सब पर अलग अलग नाम, कितने नाम रखे हैं। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है, और लिंग भी जो बनाते हैं ना, कितने अलग अलग शेप में बनाते हैं, कितनी उनकी अलग अलग उनकी माप होती, का तो बहुत छोटा, का तो बहुत लंबा, का तो बहुत मोटा, हाँ, सब अलग अलग है। भक्ति मार्ग में अपनी ही बुद्धि से यह लिंग रूप बना दिया है, नाम फिर भी शिव है, और वो क्या कहते हैं, ये स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुआ, अपने आप, क्योंकि शिव बाबा का जन्म तो होता नहीं है, तो नाम फिर भी शिव है। तो बाप कहते हैं मैं एक बार आता हूँ, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। मनुष्य भल नाम लेते हैं मुक्ति धाम निर्वाण धाम, परंतु कुछ भी जानते नहीं, न बाप को जानते हैं न देवताओं को जानते हैं। ये किसको भी पता नहीं है कि बाप भारत में आकर कैसे राजधानी स्थापन करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात नहीं है कि शिव बाबा भारत में आकर राजधानी स्थापन करते हैं, ऐसे कोई शास्त्रों में भी नहीं है। शास्त्रों में भी ऐसी बात नहीं है, परम पिता परमात्मा कैसे आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अब ऐसे तो नहीं कि सतयुग में देवताओं का को ज्ञान था जो गुम हो गया, अभी और एक राज है। सतयुग में देवताओं को तो ज्ञान था, फिर वो प्रायलोप हो गया। बाबा कहते ऐसी बात नहीं है कि सतयुग में देवताओं को ज्ञान था और वो गुम हो गया, नहीं। अगर देवताओं को भी ये ज्ञान होता ना, अभी तो संगम पर हमें ज्ञान है, फिर प्रायलोप हो जाएगा, सतयुग में नहीं है ये देवताओं को ज्ञान। तो अगर सतयुग में देवताओं को ये ज्ञान होता तो क्या होता, प्रश्न है, क्या होता, क्या होता भाई, वो चलता आता। तो बाबा कहते अगर देवताओं में भी ये ज्ञान होता तो चलता आता, सारा कल्प चलता आता। इस्लामी बोधि आदि जो है उन्हों का तो ज्ञान चलता आता है, जो धर्म पिताओं ने ज्ञान दिया वो तो चलता आता है, उनकी किताबों में है, कुरान में, बाइबल में या धम्मपद में, तो वे है कि मोहम्मद ने क्या दिया ज्ञान, या क्राइस्ट ने क्या दिया ज्ञान, या बुद्ध ने क्या दिया, वो तो सब है, उनकी किताब है। तो बाबा कहते हैं, हाँ तो बाबा कहते हैं, तो सतयुग में देवताओं का को ज्ञान था जो गुम हो गया। तो कई कहते ऐसे नहीं कि सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया, नहीं, अगर देवताओं में भी ये ज्ञान होता तो चलता आता। इस्लामी बोधि आदि जो है उन्हों का ज्ञान तो चलता आता है ना, सब जानते हैं। ये ज्ञान प्राय लोप हो गया, गीता में भी है, ये ज्ञान मैंने कल्प के आरंभ में दिया था, अंत में दिया था, लेकिन वो प्राय लोप हो गया, तो मैं फिर से ये दे रहा हूं। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, मैं जब आता हूं तो जो आत्माएं पतित बन राज्य गंवा बैठी है उन्हों को आकर फिर पावन बनाता हूं। भारत में राज्य था फिर गंवाया कैसे, अब ये भी प्रश्न, इतना धन था भारत में वो गंवाया कैसे, ये भी किसको पता नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों की कितनी तुच्छ बुद्धि बन गई है, मैं बच्चों को ये ज्ञान दे फिर प्रारब्ध देता हूं, फिर सभी भूल जाते हैं। कैसे बाप आया, कैसे बच्चों को शिक्षा दी, ये सब भूल जाते हैं, बस केवल अभी सब याद है, बस फिर सारा कल भूले हुए होंगे, वो सब भूल जाते हैं। अब ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई कहे क्यों भूल जाते, बाबा कहते ड्रामा में नूंद है, तो ड्रामा में नूंद है तो प्रश्न ही खत्म। ये भी ड्रामा में नूंद है, बच्चों को विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए। तो बाप कहते हैं ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए हो ये सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ते थे, वहां थे ही नहीं ये शास्त्र, तुम ये नॉलेज भी भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहाँ से आया सतयुग में, वो भी नहीं होगा, ये ज्ञान भी नहीं होगा, वो जो शास्त्र है वो भी वो नहीं होंगे। जिन्होंने गीता सुनकर ये पद पाया वो ही नहीं जानते तो और फिर कैसे जान सकते हैं, देवताएं भी जान नहीं सकते हैं, हम मनुष्य से देवता कैसे बने, देवताएं भी नहीं जानते कि हम मनुष्य से देवता बने, हम पहले मनुष्य थे ये भी नहीं जानते, फिर मनुष्य से देवता कैसे बने ये भी नहीं जानते। ये पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो जाता है, हम मनुष्य से देवता बने अगर ये उनको ज्ञान हुआ, माना पुरुषार्थ क्या किया कैसे किया वो उसको याद हुआ, वो ही याद नहीं है, तो इसीलिए बाबा कहते पुरुषार्थ का पाठ ही खत्म हो जाता है, पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया, तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई, वहां ये नॉलेज हो कैसे सकती। तो बाप समझाते हैं ये नॉलेज तुमको फिर से मिल रही है, कल्प पहले मिसल, तुमको राजयोग सिखलाए प्रारब्ध दी जाती है, फिर वहां तो दुर्गति है नहीं, प्रारब्ध है वो तो दुर्गति तो वहां है नहीं, जो वहां ज्ञान की दरकार भी हो तो ज्ञान की बात भी कुछ नहीं उठ सकती। ज्ञान है ही सदगति पाने के लिए, सदगति मिल गई फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं, वो देने वाला तो एक बाप है। सदगति और दुर्गति ये अक्षर भी यहां से निकलता है, सदगति को भारतवासी ही पाते हैं, समझते हैं हेवनली गॉड फादर ने हेवन रचा था, पर कब रचा ये कुछ भी पता नहीं, शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दिया है। तो बाप कहते हैं बच्चों तुमको फिर से ये नॉलेज देता हूं, फिर ये नॉलेज खलास हो जाती है, तो भक्ति शुरू होती है। नॉलेज की प्रारब्ध खलास हो गई तो फिर भक्ति शुरू होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, ये भी कोई नहीं जानते। सत्युग की आयु तो लाखों वर्ष दे दी है, तो मालूम भी कैसे पड़े। 5000 वर्ष की बात ही भूल गए हैं तो लाखों वर्ष की बात कैसे जान सके। कुछ भी समझते नहीं, बाप कितना सहज समझाते हैं। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, युग ही 4 हैं, चारों का इकट्ठा टाइम, एक एक युग का 1250 वर्ष है, तो चारों युगों को मिलाओ तो टोटल टाइम 5000 साल होगा। तो चारों युग का इक्वल टाइम है 1250 वर्ष। ब्राह्मणों का यह मिडगेट युग है, माना छोटा सा युग है पर बहुत महत्व का है। मिडगेट उनको कहते हैं ना, जो हाइट में बढ़ता नहीं है वो छोटा ही रहता है बहुत, तो उसको मिडगेट, इंग्लिश का शब्द है मिजेट, कोई मिजेट कहते हैं MIDGET, तो बाबा मिडगेट कहते हैं, माना वो छोटा वर्ग है परंतु बहुत बुद्धिमान है। तो ब्राह्मणों का ये मिडगेट युग है, बहुत छोटा है, उन 4 युगों से तो छोटा ही कहेंगे ना। तो बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स, सहज रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। धारणा तो तुमको करनी है, मेहनत तुमको करनी है। ड्रामा अनुसार जो मैं समझाता हूँ वो पाठ चला आता है, जो बताने का था वो ही आज बता रहा हूँ। कल्प पहले जो शिव बाबा ने बताया था वही आज बता रहे हैं। इमर्ज होता रहता है, तुम सुनते जाते हो, तुमको ही धारण करना और कराना है। मुझे तो धारण नहीं करना है, शिव बाबा को थोड़ी ये ज्ञान धारण करना है। शिव बाबा के पास तो है ज्ञान, वो हमको धारण करना है, उनको जो सुनाते हैं। मुझे तो धारण नहीं करना है, तुमको सुनाता हूँ, धारणा कराता हूँ। हमारी आत्मा में पाठ है, शिव बाबा की आत्मा में क्या पाठ है, पतितों को पावन बनाने का। जो कल्प पहले समझाया था वही निकलता रहता है, मुख से वही निकलता रहता है जो कल्प पहले समझाया था। मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा। अब ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में थोड़ा अंतर है। शिव बाबा कोई पहले से नहीं कोई विचार सागर मंथन करके आता है कि मुझे क्या सुनाना है आज, पर ब्रह्मा बाबा तो विचार सागर मंथन करते थे ना, तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं पहले से नहीं जानता था कि क्या सुनाऊंगा। जब मैं ये पॉइंट पढ़ रही थी तो एक बार गुलजार दादी से किसी ने पूछा, दादी, क्योंकि दादी जब बाप दादा आते थे तो दादी उस दिन बिल्कुल मौन में रहती थी, बिल्कुल हल्का सा खाती थी, कुछ ज्यादा भी नहीं, एकदम किससे ज्यादा मिलती भी नहीं थी। तो दादी से किसी ने पूछा कि दादी जब बाप दादा आते हैं तो आप उस समय कुछ विचार सागर मंथन करते हो। दादी कहती मैं क्यों करूं, मैं तो होती ही नहीं हूँ, मैं तो वहां होती ही नहीं हूँ, मुझे क्यों विचार सागर मंथन करना होता है। तो फिर शिव बाबा करते होंगे जब, क्योंकि उनको मुरली सुनानी है। अब शिव बाबा भी क्यों करेंगे विचार सागर मंथन करना, क्यों करेंगे, क्योंकि बाबा कहते ड्रामा में जो होगा वही वो नूंद होती है और शिव बाबा मुरली चलाते हैं, तो फिर ब्रह्मा बाबा करते होंगे कुछ तो। इसीलिए बहुत एक सुंदर मुरली चली थी, शिव बाप बोले ब्रह्मा बाप बोले, तो ब्रह्मा बाप जो बोलेंगे वो तो विचार सागर मंथन करके ही बोलेंगे ना। तो इसीलिए देखो बाबा क्या कहते हैं, मैं पहले से जानता नहीं था कि क्या सुनाऊंगा, भल इनकी सोल विचार सागर मंथन करती हो, ब्रह्मा बाबा की सोल, पर गुलजार दादी की सोल तो बिल्कुल विचार सागर मंथन नहीं करती। ये विचार सागर मंथन कर सुनाते हैं या बाबा सुनाते हैं या शिव बाबा सुनाते हैं या ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं, ये बड़ी गुहिया बातें हैं। इसमें ब्रेन बड़ी अच्छी चाहिए, दिमाग एकदम उस ज्ञान से भरपूर हो तब समझ सकेंगे। जो सर्विस में तत्पर होंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलता होगा। अब ये पॉइंट पूरी हुई। अब बाबा कन्याओं को समझा रहे हैं, वास्तव में कन्याएं तो बंधन मुक्त होती है। हाँ कन्याएं सब हाथ उठाओ, कन्याएं हाथ उठाओ भाई, सब हाथ उठाओ, क्यों आगे वाली नहीं हाथ उठाएगी? हाँ कन्याएं तो बंधन मुक्त होती है, वो इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती है, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना, उनको कमाई करने की तो दरकार ही नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से ये नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे माता पिता वो कहते हैं हम कुमारी का अपनी बेटी का कभी नहीं खा सकते, तो बेटी का लेते भी नहीं है। तो इसीलिए कमाई करने की तो दरकार ही नहीं है। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। पर आजकल तो सब कुछ बदल गया है ना। सेंसिबल होगी तो बस इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कई तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती रहती है। समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं। अभी तो कई समझते ना कि बहुत जरूरी है, चलो शादी भी कर ली, मान लो पति गुजर गया तो फिर अपने पांव पर खड़ा होना होता है, कई बातें हैं। अब बाबा कहते हैं समझाया जाता है इससे कोई फायदा नहीं, तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर सर्विस में लग जाओ। वो पढ़ाई तो कोई काम की नहीं है। पढ़कर चले जाते हैं गृहस्थ व्यवहार में, शादी की, हाँ चलो बहुत पढ़ाई की, फिर शादी की, पति कहेगा तुमको कोई नौकरी वोकरी नहीं करनी है, घर में ही बैठना है, तो फिर बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में चले जाते हैं, गृहस्थी माताएं बन जाती है वो। कितनी पढ़ी लिखी होती है लेकिन फिर गृहस्थी माताएं बन जाती है, बच्चे पैदा किए तो पूरी गृहस्थी हो गई, वो पढ़ाई किस काम की। कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए, कदम कदम श्रीमत पर चल धारणा में लग जाना चाहिए। मम्मा देखो शुरू से आई और फिर इस पढ़ाई में लग गई, कितनी कुमारियां तो गुम हो गई। कुमारियों को तो अच्छा चांस है, श्रीमत पर चले तो बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए। ये श्रीमत है या ब्रह्मा की मत है, शिव बाबा की, अब ये किसने बताया? कन्याएं अगर लग जाए सेवा में, ये श्रीमत है या ब्रह्मा की मत है? बाबा कहते से मुझते क्यों, कोई भी सुनाए, चाहे शिव बाबा सुनाए, ब्रह्मा बाबा सुनाए, ये भगवान की मत समझो। तो बाबा कहते हैं ये श्रीमत है या ब्रह्मा की मत है, इसमें ही मूझ पड़ते हैं। फिर भी ये बाबा का रथ है ना, ब्रह्मा बाबा, ये शिव बाबा का रथ है ना, तो शिव बाबा सुनाए या ब्रह्मा सुनाए, इनसे कुछ भूल हो भी जाए तो तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तो वो आप ही ठीक कर देंगे। चलो बाबा ने कुछ कहा वो चलो ठीक नहीं हुआ, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा समझो तो शिव बाबा ठीक कर लेगा। श्रीमत मिलेगी भी तो इनके द्वारा ही ना, सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिलती है, फिर कुछ भी हो रेस्पॉन्सिबल खुद है, शिव बाबा है। इनसे कुछ हो जाता है ब्रह्मा बाबा से तो बाबा कहते मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, शिव बाबा कहते मैं जिम्मेदार हूँ। ड्रामा में ये राज नूंधा हुआ है, इनको भी सुधार सकते हैं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को भी सुधार सकते हैं। फिर भी बाप है ना, ब्रह्मा बाबा भी तो बाप है ना, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो मूझ पड़ते हैं। पता नहीं शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा कहते हैं, अगर समझे शिव बाबा की मत देते हैं, हाँ पता नहीं ये नहीं कहते हैं, चाहे शिव बाबा देवे ब्रह्मा बाबा देवे, हम समझे ये शिव बाबा की मत है, अगर ये समझे तो कभी भी हिले नहीं। शिव बाबा जो समझाते हैं सो राइट ही है। तुम कहते हो बाबा आप ही हमारे बाप टीचर गुरु हो तो श्री मत पर चलना चाहिए ना, जो कहे उस पर चलो, हमेशा समझो। शिव बाबा कहते हैं वो है कल्याणकारी, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पर है, ब्रह्मा बाबा की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी शिव बाबा पर है, उनका रथ है ना ब्रह्मा, मूंझते क्यों हो, पता नहीं ये ब्रह्मा की राय है या शिव की राय है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, श्रीमत जो कहे सो करते रहो, दूसरे के मत पर तुम आते ही क्यों हो, श्री मत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा, है ना, घुटका भी नहीं आएगा, झुटका भी नहीं आएगा, परंतु चल नहीं सकते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम श्री मत पर निश्चय रखो तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूं, जो मुरली में बाबा कहते हैं उस पर चलो तो शिव बाबा जिम्मेदार है, तुम निश्चय ही नहीं रखते हो फिर मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। अभी कई आते हैं हमारे पास, कन्याएं आती है, वो पूछती है मेरे से मैं क्या करूं, पढ़ाई करूं या नहीं करूं, हमारे माँ बाप कहते हैं पढ़ो, ये करो वो करो, हम क्या करें। तुम कहते हैं भाई आप देखो सर्कमस्टांसेस देखो ना, कई बार एक बेटी है, बेटा है ही नहीं, अब वो बेटी जो कमाती है वही माँ बाप खाते हैं मान लो, तो फिर उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो बाबा परिस्थिति को देख करके सुनाते थे ना, तो बाबा कहते हैं तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं, हमेशा समझो श्री मत पर चलना ही है, वो जो कहे चाहे प्यार करो चाहे मारो, हाँ जो कहे बाबा, ये उनके लिए ही गायन है, इसमें लात आदि मारने की तो बात नहीं है, हाँ चाहे मारो चाहे, यानी कोई लात मारने की तो बात ही नहीं है, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। मैं अपना ही अनुभव सुनाती हूँ, हमारे घर में सब कहते थे तुम डॉक्टरी पढ़ो डॉक्टरी पढ़ो, पहुंच तो गई थी इंटर तक, तो डॉक्टरी पढ़ो, अब डॉक्टरी पढ़ो, मैंने बाबा से पूछा, ये 67 की बात है, ब्रह्मा बाबा से मैंने बाबा को पत्र लिखा, मैंने पढ़ रही थी, बाबा साकार में थे, मैंने पत्र लिखा बाबा मैं क्या करूं, घर में सब कहते हैं डॉक्टर बनो, तो बाबा मेरी तो इच्छा नहीं है, मैं तो बाबा की सेवा में लगना चाहती हूं, लेकिन घर वाले बहुत पीछे पड़े हैं। तो बाबा ने मुझे जवाब दिया, पत्र लिखा बाबा ने, साकार बाबा पत्र लिखते थे सबको, और बाबा ने मुझे क्या लिखा, बच्ची तुम रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो, ये बाबा ने मुझे पत्र में लिखा, साकार बाबा ने, रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो। तो बस हमने संकल्प कर लिया आगे नहीं पढ़ना, लेकिन बंधन था घर में, तो बंधन था तो मैं निकल भी नहीं सकती थी क्योंकि घर वाले छुट्टी नहीं दे रहे थे, मैंने बहुत कहा लेकिन किसी ने मेरे घर से किसी ने छुट्टी नहीं दी, क्योंकि दादी प्रकाशमणि हमारी टीचर थी काम देवी बॉम्बे में, दादी जी हमारी टीचर थी, तो मैंने दादी को कहा देखियो दादी बाबा कहते हैं रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, पर दादी मुझे बंधन है मैं नहीं निकल सकती हूँ, मैं तो चाहती हूँ आ जाऊं मैं सेंटर पर, तो दादी ने कहा सेंटर पर भी मैं नहीं रख सकती हूँ क्योंकि घर से चिट्ठी चाहिए, अब चिट्ठी कौन दे मुझे, तो चिट्ठी भी नहीं मिलेगी, तो घर में भी रहना नहीं चाहती हूँ और सेंटर पर भी नहीं रह सकती क्योंकि चिट्ठी नहीं है। तो फिर उस समय दीदी निर्मला को बाबा ने कैसे कहा था कि तुम सेंटर खोलो और वहां कुमारियों की ट्रेनिंग रखो, तो कुमारियों की ट्रेनिंग रखी थी उस समय बॉम्बे में, तो उस समय कैसे हमने दीदी से पूछा, निर्मला दीदी से, दीदी मैं क्या करूं, बाबा ये कहते हैं और लौकिक ये कहते हैं, तो दीदी ने कहा देखो मैं भी डॉक्टर हूं लेकिन मैंने बाबा ने मुझे कहा छोड़ो, तो मैंने डॉक्टरी छोड़ दी, तो मैं तुमको कैसे कहूंगी डॉक्टर बनो तुमको तो नहीं कहूंगी, फिर भी अगर तुम समझती हो कि बंधन है तो तुम 2 साल और पढ़ो, बीएससी करो ग्रेजुएशन करो। तो बस जैसे ही ग्रेजुएशन किया उसके बाद तो सब बंधन खत्म हो गए। तो देखो फिर 69 में पहली ट्रेनिंग हुई कुमारियों की, तो उसमें आ गई, फिर तो बाबा की सेवा में लग गई। तो देखो बाबा क्या, बाबा सदा यही कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो तुम निश्चय ही नहीं रखते हो तो फिर मैं भी रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हमेशा समझो श्री मत पर चलना ही है, वो जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो। अभी लात तो नहीं मारेंगे ना, बाबा कहते हैं, परंतु किसको निश्चय बैठना ही बड़ा मुश्किल है। निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, निश्चय पूरा बैठ जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, लेकिन वो अवस्था आने में भी टाइम चाहिए, वो होगी अंत में। इसमें निश्चय बड़ा अडोल चाहिए। शिव बाबा से तो कभी कोई भूल हो ना सके, हाँ शिव बाबा कैसे भूल करेंगे, इनसे हो सकती है भूल, ब्रह्मा बाबा से हो सकती है भूल, ये दोनों ही इकट्ठे है ना। परंतु तुमको निश्चय भी रखना है कि शिव बाबा समझाते हैं, उस पर हमको चलना पड़े, तो बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो, तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। शिव बाबा की श्रीमत समझकर चलते चलो तो उल्टा भी सुलटा हो जाएगा। कहां मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, समझ नहीं पाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की मुरली को भी बड़ी अच्छी रीति समझना है। बाबा ने कहा व इसने कहा, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बोलते ही नहीं है, ऐसे तो नहीं होगा ना, ब्रह्मा नहीं बोलते, ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं मुरली में, परंतु बाबा ने समझाया है। अच्छा समझो, ये ब्रह्मा कुछ भी नहीं जानते, शिव बाबा ही सब कुछ सुनाते हैं। शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, अब शिव बाबा सुनाते हैं, तो ब्रह्मा बाबा, बाबा कहते हैं मैं ऐसे समझता हूँ कि मैं शिव बाबा के रथ को स्नान कराता हूँ, शिव बाबा के भंडारे की सर्विस करता हूँ। ये याद रहे तो भी बहुत अच्छा, हम भी ऐसे समझें, तो ये याद रहे तो भी बहुत अच्छा। शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों से तीखे जा सकते हैं। भले भंडारे में है, किचन में है, खाना बनाते हैं, बर्तन मांजते, कुछ भी करें, पर शिव बाबा की याद में रहे तो बहुत तीखे जा सकते हैं। तो मुख्य बात है ही शिव बाबा को की याद की, अलफ और बे बाकी सब है डिटेल। तो बाप जो समझाते हैं उस पर अटेंशन देना है, बाप ही पतित पावन ज्ञान का सागर है ना, वही पतित शूद्रों को आकर ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मणों को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते हैं बाबा। शूद्र पहले ज्ञान ले, ब्राह्मण बने, तब कहेंगे बाबा पावन बनाते हैं। ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं है, थोड़े थोड़े अक्षर हैं। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हैं। मुंह जाते हैं, देवताएं तो है ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी और सीताराम की डिनास्टी। तो बाप कहते हैं भारतवासी स्वीट चिल्ड्रन, याद करो, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, कल की तो बात है। तुमको राज्य दिया था इतना अकीचार, अकीचार अथा धन दौलत दिया था, बाप ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया था, और कोई खंड थे ही नहीं, फिर तुमको क्या हुआ, क्या हुआ भाई, कहाँ चला गया सारा धन। विद्वान आचार्य पंडित कोई भी इन बातों को नहीं जानते, तो बाप ही कहते हैं अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना, तुम भी कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं इतना तुमको धन दिया, फिर तुमने कहाँ गवा दिया। अब ये मुरली जब हम पढ़ते ना, तो मुझे मनोहर दादी की याद आती है। मनोहर दादी जब ये मुरली पढ़ती थी ना, ऐसे बच्चे तुमने कहाँ गवा दिया, तो मैं बाबा को कहती हूँ बाबा आपके मंदिर बनाने में खर्च किया। द्वापर युग में कितने शिव के मंदिर बने, बड़े बड़े शिव के मंदिर,
तो मंदिर बनाने में खर्च किया, आपकी भक्ति करने में खर्च किया। तो मनोहर दादी ऐसे बोलती जाती थी, इतने नशे से बोलती थी, बहुत हंसा हंसा के मुरली सुनाती थी। तो बाबा कहते हैं, अरे भारतवासियों, तुमको राज्य भाग्य दिया था ना, तुम भी कहेंगे, शिव बाबा कहते हैं, इतना तुमको धन दिया फिर तुमने कहाँ गंवा दिया। बाप का वर्षा कितना जबरदस्त है, तो बाप ही पूछते हैं ना। वह बाप चला जाता है लौकिक में, पिता पूछेगा बच्चे को, तुमको मैंने इतना दिया तुमने क्या किया। और चलो पिता गुजर गया और उसकी सारी मिल्कियत बच्चे को मिली, तो बाबा कहते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए सब कहाँ गंवा गए। हाँ, बाप ही पूछते हैं ना। वह बाप चला जाता, समझो शरीर छूट गया और सारी प्रॉपर्टी बेटे को मिली, तो मित्र संबंधी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए थे सब कहाँ गंवा दिए। ये तो बेहद का बाप है, तो बेहद का बाप भी पूछ सकता है ना, इतना तुमको धन दिया था तुमने क्या किया, कहाँ गंवा दिया। किसको भी समझ में नहीं आता है, तुम समझते हो बाबा पूछते तो ठीक है ना, इतना शिव बाबा ने हमें दिया, स्वर्ग में कितने धनवान थे फिर क्या किया, इतने कंगाल कैसे बन गए हो। पहले तो सब कुछ सतो प्रधान था, फिर कला कम होती गई तो सब कुछ कम होता गया। सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, राधे कृष्ण से लक्ष्मी नारायण का नाम जास्ती है, जास्ती है लक्ष्मी नारायण का नाम। उनों की कोई ग्लानी नहीं लिखी है, कैसे जास्ती है, लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानी नहीं लिखी है। श्री कृष्ण की तो बहुत ग्लानी लिख दी, भले उसका आध्यात्मिक अर्थ है लेकिन कितनी ग्लानी लिख दी है, मक्खन चोर था, स्त्रियां चुराता था, पता नहीं क्या क्या लिख दिया, वस्त्र चुराता था, लेकिन बाबा उसका आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते, उनके राज्य के अंदर कोई भी प्रकार का उनकी ग्लानी नहीं है। तो ये बातें समझने की है, बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे इस माया से खबरदार रहो, लास्ट वाक्य, बच्चे इस माया से खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्री मत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में अडोल रहना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझानी पर अटेंशन देना है, स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव, अपने अनादि और आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव, आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अनादि रूप में भी आत्मा पवित्र है और आदि रूप सतयुग में भी आत्मा पवित्र है। अपवित्रता क्या है? आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। अपवित्रता शूद्रों की चीज है, ये ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप में देखो, रियल को रियलाइज करो, रियल को रियलाइज करो। हाँ, बड़े सुंदर इंग्लिश शब्द है, रियल जो सच्चा है उसी को ही महसूस करो। रियल को रियलाइज करो तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। याद है ना, ये जनवरी महीना चल रहा है, अव्यक्ति महीना, मौन में रहना है, साइलेंस में रहना है, ये जरूर अपने ऊपर ध्यान देना है। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरें तो काट ली है, लेकिन बहुत महीन और रॉयल धागे अभी भी बंधे हुए हैं। कई पर्सनालिटी फील करने वाले हैं, कई पर्सनालिटी फील करने वाले हैं। स्वयं में अच्छाइयां है नहीं, लेकिन महसूस ऐसे होती है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये जीवन बंद के धागे मेजॉरिटी में है। मियां मिट्ठू जिसको बाबा कहते हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम तो बहुत याद करते हैं, हम तो बहुत ये करते हैं, और है नहीं। तो बाबा कहते ये जीवन बंद के धागे मेजॉरिटी में है। बाप दादा अब इन धागों से भी मुक्त जीवन मुक्त देखना चाहते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच दो छोटे बच्चे हैं, ये कलकत्ता से आए हैं, इन्होंने योगा डे पर कुछ हठ योग किया था कुछ कहा, तो इनको प्राइज मिली है, तो वो दिखाना चाहते हैं उन्होंने क्या किया, तो अभी वो दिखाएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। कहाँ है वो बच्चे, बच्चे कहाँ है वो? अच्छा, तो जब तक वो बच्चे आए तब तक आप मधुबन निवासियों के लिए विशेष एक सूचना है कि 5 तारीख से 5 जनवरी शाम से मनमोहिनी वन में, सॉरी मान सरोवर में मधुबन निवासियों के लिए खाद भट्ठी रखी है, और वो भट्ठी मधुबन निवासी भाई बहनों के लिए खास रखी है। जो इस भट्ठी में जाना चाहते हैं वो अपना नाम रिसेप्शन में देंगे। 5 शाम को जाना, 6-7 करके 8 को वापस आना। जो मधुबन निवासी भाई बहने जाना चाहते हैं या ट्रायल वाले भी, वो जरूर अपना नाम लिखाएं। अभी ये दो बच्चों ने, इनका नाम क्या भाई? इनका नाम है, एक का नाम है प्रथम। प्रथम किसका नाम है? प्रथम भाई, इनका नाम प्रथम है। और दूसरे का नाम क्या है? समेश, क्या नाम? हाँ, समेश ऐसे, अच्छा पता। तो ये दोनों कुछ हठयोग करके दिखाएंगे, इनको इनाम मिला है। तो कराओ, देखो क्या सुनाना, क्या दिखाना है, दिखाओ। आओ योग करें, क्या इस गीत पर है? आओ योग करें। अब इस गीत चलाओ।